जगत सिद्ध जांगदेव की एवं संत ज्ञानेश्वर की चर्चा चल रही थी। सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए, संत ज्ञानेश्वर को नीचा दिखाने के लिए जांगदेव जी प्रयासरत हैं। ईर्ष्या क्या करती है? यही कल आप जी से अर्ज की थी। ईर्ष्या में जिसके प्रति आप ईर्ष्यालु हैं, उसको आप नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे आप नीचा सिद्ध करना चाहते हैं। जिसके प्रति देवियों ईर्ष्या है, स्पष्ट है, आप स्वीकार करती हैं कि वह आगे है, वह उच्च है, तभी तो ईर्ष्या है, नहीं तो ईर्ष्या किस बात की होती? अब आपसे ये सहन नहीं होता। क्यों? आप वहां तक उच्च, उतनी दूर या उतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। निराशा अंदर जलन उत्पन्न करती है, इसी को ईर्ष्या की अग्नि कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है? जो आगे है उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दुर्गुण ना होते हुए भी उसके अंदर दुर्गुण ढूंढता है और फिर औरों के सामने बखान करता है, ताकि दूसरे भी जो उसे उच्च समझते हैं, आगे समझते हैं, वे उसे नीचा समझने लग जाएं, उन्हें यथार्थता समझ आ जाए। इसके अनुसार यथार्थता ये है कि वह नीचा है, वह इतना ऊंचा नहीं है। साधक साधकक्षणों भक्त जिसमें ईर्ष्या लेश मात्र भी है, भक्ति के आचार्य कहते हैं वे भक्त कहलाने योग्य नहीं है। ऐसा गंदा दुर्गुण है ये, जो हमारे किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए, इवन लेश मात्र। भक्त क्या करता है? भक्त के अंदर भी ईर्ष्या आती होगी, साधक के अंदर भी ईर्ष्या आती होगी। साधन काल में बहुत कुछ होता है, सेवा भी तो साधना है। कौन सेवा अधिक कर रहा है, किसकी सेवा को अधिक सम्माननीय माना जा रहा है, किसकी सेवा को स्वीकार किया जा रहा है, कौन सेवा में आगे बढ़ गया हुआ है, कल आए आज बहुत आगे बढ़ गए, ये सब ईर्ष्या के चित्त हैं। साधकक्षणों देवरानी जेठानी की ईर्ष्या, ननद भाभी की ईर्ष्या, भाई भाई की ईर्ष्या, सास बहू की ईर्ष्या, कल की बहू उससे ईर्ष्या, सास की, ये सब बातें हमारे देखने में आती हैं। तो भक्त की सोच किस प्रकार की होती है? भक्त कहता है परमात्मा है सबको बड़ा बनाने वाला, तो मैं उसे छोटा बनाने की बजाय मैं स्वयं ही बड़ा क्यों ना बनूं? तो वह बड़ा बनता है। देखो ना देवियों सज्जनों, दो रेखाएं आपने खींची हैं, दो लाइनें आपने लगाई हैं। कोई अध्यापक अध्यापिका आपसे कहे बिना काटे एक को छोटा कर दो, तो क्या करना होगा? जो दूसरी है उसे लंबा कर दीजिएगा, तो वह दूसरी अपने आप छोटी हो जाती है। तो साधक क्या करता है, भक्त क्या करता है? वह उनके प्रति जलन न रख के तो अपने आप को उन जैसा बनने के लिए और उनसे भी आगे बढ़ने के लिए साधना रत रहता है, ताकि अपने आप को वह बड़ा बना सके। तो ईर्ष्या का स्थान कोई नहीं रहता। अब ईर्ष्या होगी तो दूसरे व्यक्ति को होगी, इसके प्रति इसके अंदर तो किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होगी। सिद्ध चांगदेव संत कहलाने योग्य नहीं है, इसलिए उसे बार बार सिद्ध कहा जा रहा है। वह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहता है, ताकि संत ज्ञानेश्वर को नीचा दिखाया जाए। कल का छोकरा 16 साल की आयु है उसकी, और ये इतना महान, इतना ज्ञानी हो गया है। तो कल आप जी ने देखा कोरा कागज, उसे पत्र के रूप में ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचा दिया। ज्ञानेश्वर जी महाराज उस पर इतना ही कहते हैं, जाके उन्हें मैसेज दे दीजिएगा, संदेश दे दीजिएगा चांगदेव आपकी आयु तो 1400 वर्ष है, लेकिन हो कोरे के कोरे। कल यहां तक चर्चा हुई थी, उत्तर मिल गया है सिद्ध चांगदेव को और चिड़े हैं। ठीक है, मैं इसे बतलाऊंगा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। जहां देवियों ईर्ष्या होती है वहां अभिमान भी स्वतः ही होता है। बात तो सारी, खेल तो सारे उसी के हैं। वह व्यक्ति क्रोधी भी होता है जिसके अंदर ईर्ष्या होती है। सो अनेक सारी अग्नियां इकट्ठी होके तो उस व्यक्ति के भीतर को जला के रख कर देती हैं, किसी काम का नहीं रहने देती। इसकी तुलना साधक जनों संत महात्मा ऐसी अंगीठी से करते हैं। पुराने वक्तों में कोयले की अंगीठियां हुआ करती थीं, यदि कुछ दिनों के बाद उनके अंदर से लिपाई नहीं की जाती थी तो वह अंगीठी जर्जर हो जाती थी, वह किसी काम की नहीं रहती थी। संत महात्मा कहते हैं ये जितनी भी अग्नियां हैं, चाहे ईर्ष्या की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, वैर द्वेष की अग्नि है, ये सारी की सारी अग्नियां मिलके हमें बिल्कुल उसी अंगीठी की तरह जर्जर बना देती हैं, मानो किसी काम की नहीं रहने देती। और तुलना देते हैं ईर्ष्यालु की, जिस पेड़ को दीमक लगी हुई हो उस पेड़ को आप खाद भी दीजिए, पानी भी दीजिए, प्रकाश भी दीजिए, उसके बावजूद भी कभी वह फलता फूलता नहीं है। ऐसी ही हालत ईर्ष्यालु की हुआ करती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्यों? ईर्ष्या ने अंदर से बिल्कुल जला के राख कर दिया हुआ है, निरर्थक कर दिया हुआ है, नीरस कर दिया हुआ है। चांगदेव बाघ की सवारी करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैंने हिंसक पशुओं पर भी अपना नियंत्रण किया हुआ है, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन अब करने जा रहे हैं। बाघ की सवारी की है, सर्प की लगाम बनाई है, कोबरा की नागिन की लगाम बना के तो सिद्ध चांगदेव चल पड़े हैं। सूचना मिली संत ज्ञानेश्वर को कि इस प्रकार से सिद्ध चांगदेव मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। मिलना तो बहाना ही है, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपना बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर की कृपा कुछ इस प्रकार की होगी, संत संत ही ठहरे, भक्त भक्त ही ठहरे। अतएव मन ही मन सोचा इसे सिद्धियों का अभिमान नहीं होना चाहिए, इसने तपस्या तो करी है लेकिन ये अभिमान इसका किसी न किसी ढंग से दबाना चाहिए, मरना चाहिए। ये संत की भक्त की भावना रहा करती है, ये परमात्मा की भावना भी इसी प्रकार की है। वह भक्त का सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन उसके अंदर अभिमान सहन नहीं करता। अतएव जब जब उसे मौका मिलता है परमात्मा देव को, उनके अभिमान का भक्षण करता रहता है, खाता रहता है अभिमान अपने भक्त का, ताकि भक्त निराभिमानी बने। इसके अंदर अभिमान बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। आज साधकों संत ज्ञानेश्वर उन्हें उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं जिस वक्त ज्ञानेश्वर को सूचना मिली तो वे चौके में बैठे हुए थे, जहां खाना इत्यादि बनता है, चौका होता है, उस चौके में बैठा है। संत की ज्ञानेश्वर ने तत्काल चौके को हुक्म किया, चल चौके सिद्ध चांगदेव के पास। चौका उठा है वहां से, उठ के तो उसने चलना शुरू कर दिया है, जाके सिद्ध के पास पहुंचा। सिद्ध क्या देखता है, शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने तो प्राणी हिंसक पशुओं पर, हिंसक जीव जंतुओं पर ही नियंत्रण, इसका तो जड़ पर भी नियंत्रण है। अतएव अपनी सिद्धि का अभिमान टूट गया, ऐसे लगा कि एक झटका सा मुझे लगा है। अतएव बाग से उतर के तो ज्ञानेश्वर जी के श्री चरणों में मत्था टेका, उनसे क्षमा मांगी। एक अभिमान तो चकनाचूर हो गया, अभी दूसरा अभिमान बाकी है। उसे यह भी अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मेरे बहुत से शिष्य हैं, मेरे बहुत से अनुयायी हैं। साधक जनों, ये ईर्ष्या हम सामान्य व्यक्तियों में नहीं हुआ करती, ये जो अपने आप को गुरु मानते हैं, गुरु कहलाते हैं, उनमें भी ईर्ष्या कम नहीं हुआ करती, उनमें भी ईर्ष्या होती है। इसके शिष्य अधिक हो गए, ये अधिक ख्याति को प्राप्त हो गया है, इसको हर जगह सफलता ही सफलता मिल रही है, तो ये उनकी ईर्ष्या का कारण बनता है, तो उनके अंदर भी ईर्ष्या पैदा होती है। अभी इनके अंदर एक अभिमान बाकी है, मेरे बहुत से शिष्य हैं, मेरे बहुत से अनुयायी हैं। संत ज्ञानेश्वर इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अतएव चांगदेव जी का ये अभिमान भी वे तोड़ना चाहते हैं। संत दयालु हुए हैं, कृपालु हुए हैं, जो अभिमान पर चोट मारे साधकजनों वे सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वे आपका परम हितकारी होगा, तभी वह आपके अभिमान पर चोट मार के तो आपके अंदर का अभिमान बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। संत ज्ञानेश्वर आज ऐसे ही दयालु हुए हुए हैं, अतएव सिद्ध चांगदेव के मुख से निकलवाया, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आत्मबोध दीजिएगा, मुझे आत्मज्ञान दीजिएगा, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। एक 1400 वर्ष का सिद्ध 16 वर्ष के भक्त से शिष्यत्व की भीख मांग रहा है, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत से शिष्य उनके साथ आए हुए थे, उनके शिष्य, अतएव भक्त ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने शर्त रखी, चांगदेव जी मैं आपको शिष्य तब स्वीकार करूंगा यदि आपके इन शिष्यों में से कोई अपनी बलि देने को तैयार हो तब। शिष्यों ने ये बात सुनी, अतएव एक एक करके खिसकने लग गए, सभी के सभी शिष्य खिसक गए, मानो ये अभिमान कि मेरे इतने शिष्य हैं वह भी खत्म हुआ। इधर उधर देखा, इधर उधर झांका, मेरे लिए कोई भी शिष्य बलि देने को तैयार नहीं हुआ, तो काहे के शिष्य है ये, ये क्या शिष्य है, कौन इन्हें शिष्य कहे। अतएव ये अभिमान भी चांगदेव का दूर हुआ। कहते हैं चांगदेव ने हाथ जोड़ के कस के पांव पकड़ के कहा, ज्ञानेश्वर जी मैं ही अपनी बलि देने को तैयार हूं, पर मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। कहा, मुझे तन के सिर की बलि नहीं चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, देवियों सज्जनों, मुझे तन से जो जुड़ा हुआ सिर है इसकी बलि नहीं चाहिए। सामान्यतः तो हम यही समझते हैं ना कि बलि का अर्थ ये है, इस मुंड को दे देना, चढ़ा देना, ये बलि है, नर बलि है या पशु बलि है, यही अर्थ है। उनका मुंड उनको काट के तो उनके आगे चढ़ा दिया जाता है, इसे बलि कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, चांगदेव मुझे तन वाला मुंड बलि नहीं चाहिए, मुझे वैश्य नहीं चाहिए, मुझे तेरा अहम चाहिए, मुझे अहम की बलि चाहिए, अपने अहम की बलि दे। जो ये सोचता था कि मेरे इतने शिष्य हैं, जो ये सोचता है मेरा आश्रम है, जो ये सोचता है कि मैं गुरु हूं, मेरे इतने शिष्य हैं, ये मेरा है, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मैं इतनी सिद्धियों का मालिक हूं, ये मैं करने वाला है, जो सिर है ना, मुझे उसकी जरूरत है, जिसे अहम कहा जाता है, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तब मैं तुम्हें नामदान दूंगा, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। परमेश्वर साधक जनों लाज रखता है, परमेश्वर बहुत कृपा करता है, जिसके प्रति ईर्ष्यालु हैं लोग, उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि उसके प्रति ईर्ष्यालु हैं, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि से न जाने कितने लोग जल रहे होते हैं, उस बेचारे को कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति देवियों सज्जनों एक दिन कबीर साहब के साथ आ गई। कबीर साहब की ख्याति को देखकर अनेक संत महात्मा सामान्य व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु हो गए उनके प्रति। अतएव उन्हें पता नहीं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए देखो नीचा दिखाने वाला किस प्रकार से डंक मारता है, आप सोच नहीं सकते किस प्रकार से नीचा दिखाना है उन्हें। कबीर साहब को आज चिट्ठियां भेज दी संतों महात्माओं को, सैकड़ों की संख्या में चिट्ठियां चली गई। परसों कबीर साहब बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, मेहरबानी करके सबके सब पधारिएगा। बेचारे कबीर को कुछ पता ही नहीं कि ये चिट्ठियां लिखी गई हैं, उसे नीचा दिखाने का ढंग। लेकिन परमात्मा तो जानता है, परमात्मा तो लाज रखता है ना, परमात्मा तो कृपा करता है, दया करता है। मानो वह अपने भक्त की किसी प्रकार से भी लाज पर आंच नहीं आने देता। अतएव भंडारे का दिन सैकड़ों की संख्या में काशी में उनके आश्रम के आगे तांता लग गया है। कबीर साहब देखा ये क्या बात है, अतएव भूसी वाले कमरे में छिप के बैठ गए। मैं क्या कर सकता हूं इस वक्त, मेरे घर अपने लिए रोटी नहीं है, मेरे घर लोई के लिए रोटी नहीं है, मैं इतने सारे संतों महात्माओं को कहां से रोटी खिलाऊंगा। अतएव भूसी वाले कमरे में छिप के बैठ गए। कहते हैं देवी सज्जनों, ये सच्ची गाथाएं हैं, कंकॉक्टेड स्टोरीज नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। कहते हैं क्या देखते हैं, भगवान का सिंहासन हिला, चल लक्ष्मी लोई बन, मैं कबीर बनता हूं। दोनों अपने भक्त की जाके लाज रखते हैं, अनेक देवी देवता और साथ लिए जो सेवा करने के लिए है। एक बैलगाड़ी के ऊपर आगे कबीर सा बैठे हैं, साथ लोई बैठी हुई है, ढेर सारा सामान। आके भजन कीर्तन हुआ, भजन कीर्तन के बाद भंडारा हुआ। ऐसा भंडारा कभी जिंदगी में उन संतों महात्माओं ने कभी नहीं देखा था। ऐसा भोजन, स्वादु भोजन कभी जिंदगी में इससे पहले नहीं खाया हुआ था। तो परमात्मा ने लाज रखी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो कबीर साहब बाहर निकले भूसी वाले कमरे में से, इतना ही कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरी किया, कहत कबीर कबीर। तो यहीं साधक जनों समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।